कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा कुंज बिहारी जय गोपी जनवल्लभ जनवल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन यशोदानंदन रावण यमुना तीरावन यमुना तीरा जय राधा माधव कुंज बिहार जनवल्लभ गिरिवर धारी गोपी जनवल्लभ यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यशोदा नंदन जन रंजन यशोदानंदन यमुना तीरावन चारी यमुना तीरावन चारी यमुना तीरावन चारी यमुना तीरा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे
वासुदेवाय।
वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत तेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठ किम् ग्रंथ श्रीमद् भागवतम दसम स्कंद अध्याय 8 श्लोक संख्या 14 प्रयागम प्रागयम वासुदेवस्य कचि जातः तव आत्मज वासुदेवः इति श्रीमान् अभिज्ञा संप्रचक्षते प्रागयं वासुदेवस्य प्रागयं वासुदेवस्य कचिज्जातस्तवात्मजः क्वचिज्जातस्तवात्मजः वासुदेव इति श्रीमान् वासुदेव इति श्रीमान् अभिज्ञा संप्रचक्षते प्रागयं वासुदेवस्य प्रागयं वसुदेवस्य क्वचिज्जातस्तवात्मजः क्वचिज्जातस्तवात्मजः वासुदेव इति श्रीमान् वासुदेव इति श्रीमान् अभिज्ञः संप्रचक्षते प्रागयं वासुदेवस्य क्वचिज्जातस्तवात्मजः वासुदेव इति श्रीमान् अभिज्ञः संप्रचक्षते प्रागयं वासुदेवस्य क्वचिज्जातस्तवात्मजः वासुदेव इति श्रीमान् संप्रचक्षते प्रागयं वसुदेवस्य क्वचिज्जातस्तवात्मजः वासुदेव इति श्रीमान् अभिज्ञातं प्रचक्षते प्रागयं वसुदेवस्य क्वचिज्जातस्तवात्मजः वासुदेव इति श्रीमान् संप्रचक्षते माताजी प्रागयं वसुदेवस्य क्वचिज्जातस्तवात्मजः वासुदेव इति श्रीमान् अविद्या संप्रचक्षते वासुदेव इति श्रीमान् प्रचक्षते प्रागयं वसुदेव पति जातस्तवात्मज वासुदेव इति श्रीमान् प्राग पहले अयम यह बालक वसुदेवस्य वसुदेव का क्वचित कभी कभी जातः उत्पन्न हुआ था तव तुम्हारा आत्मजः पुत्र कृष्ण वासुदेवः अतएव उसका नाम वासुदेव रखा जा सकता है। इति इस प्रकार श्रीमान अत्यंत सुंदर अभिज्ञा विद्वान संप्रचक्षते कृष्ण को वासुदेव भी कहते हैं। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद महाराज के द्वारा श्रील प्रभुपाद की। अनेक कारणों से आपका यह सुंदर पुत्र पहले कभी वसुदेव के पुत्र रूप में प्रकट हुआ था, अतएव जो विद्वान है वे इस बालक को कभी कभी वासुदेव कहते हैं। तात्पर्य गर्ग मुनि ने अप्रत्यक्ष रीति से यह बतला दिया, मूलतः यह बालक वसुदेव के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ था, यद्यपि अब यह आपके पुत्र की भांति कार्य कर रहा है। सामान्यतः यह आपका पुत्र है किंतु कभी कभी यह वसुदेव का पुत्र रहता है। ओम अज्ञानति निरंधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप सदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। सप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद यद्वैत गदाधर श्रीवासादिति गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण। भागवतम का यहाँ पर दसम स्कंध और दसम स्कंध के अंतर्गत यहाँ पे गर्गाचार्य भगवान कृष्ण का नामकरण करने वाले हैं। तो कल के श्लोक में जिस प्रकार बताया गया था कि आसन वर्णा प्रयोजित दृढ़ तनो यगम तनो, भगवान जो है वह आगे के युगों में अलग अलग वर्ण से अलग अलग कलर वाले रूप में प्रकट होते हैं, वही भगवान कृष्ण इस बार कृष्ण वर्ण में आए हुए हैं, है ना। मतलब भगवान कृष्ण इस बार काले रंग में मतलब मूल अवतारी के रूप में प्रकट हुए हैं। तो प्राग अयम वसुदेवस्य अर्थात पहले ये जो आपका बालक है वो वसुदेव का पुत्र रहा है। क्वचित जात सवात्मज पहले ये क्वचित पहले कोई कुछ लोगों का कहना है विद्वत भी अर्थात अच्छे अच्छे विद्वान लोग इस बात को जानते हैं कि पहले आपका पुत्र नहीं था, पहले किसका पुत्र हुआ ये कृष्ण वसुदेव का और उसके बाद ये आपके पुत्र के रूप में फिलहाल कार्य कर रहा है, लेकिन इससे पहले उसका पिता कौन थे, उनके पिता वसुदेव थे। इसलिए इनको कभी कभी कुछ लोग अर्थात ज्ञानी लोग इसको क्या कहेंगे, वासुदेव करके भी इसको संबोधित करेंगे। तो इस प्रकार से गर्गाचार्य एक नाम नहीं दे रहे हैं, और भी आगे नामकरण करेंगे, जैसे बलराम जी का भी बहुत सारे नाम देंगे, दो तीन नाम देंगे, है ना। उसी प्रकार भगवान कृष्ण को भी एक नाम यहाँ पर दिया जा रहा है, वासुदेव, है ना। वैसे वासुदेव शब्द का अर्थ होता है कि सर्वभूतादि वास्तव वासुदेव तथा स्मृता। अन्य अन्य पुराणों, महाभारत आदि बहुत जगहों पर ये वासुदेव शब्द की डेफिनेशन दिया हुआ है कि वासुदेव का क्या क्या अर्थ होता है। तो इस श्लोक के अंतर्गत नामकरण कर रहे हैं गर्गाचार्य और कह रहे हैं कि वासुदेव, क्योंकि वसुदेव एक अर्थ इनका बताया गया है कि ये वसुदेव का पुत्र हुआ, इसके लिए इसका नाम एक होगा वसुदेव, ये एक हुआ। और उसके बाद दूसरा, महाभारत के अनुसार अगर देखा जाए तो उसमें कहा है सर्वभूतादि वासस्य वासुदेव सतत स्मृता, अर्थात सभी जीवात्माओं के अंदर जो रहने वाले हैं उसको वासुदेव कहा जाता है। सभी जीवात्माओं में जिनका स्थान है परमात्मा रूप में, उस भगवान को वासुदेव कहा जाता है। और उसके बाद आप जानते होंगे भगवान कृष्ण से चतुर्व्यूह, बलराम जी और बलराम जी से फिर चतुर्व्यूह, उसमें अनिरुद्ध, वासुदेव, संकर्षण और तो उनको भी एक वासुदेव कहा जाता है। तो वासुदेव की कई सारी जगहों पर अलग अलग रीत से व्याख्या की गई है। सर्वत्र वसति इति वासुदेव, अर्थात भगवान जो सब जगह पर वास करते हैं उसको भी वासुदेव कहा जा सकता है। तो इस प्रकार वासुदेव शब्द की अनेक अनेक जगहों पर, जैसे मैंने कुछ को लिखा है वहां पर, तो करीबन 25-30 जगहों से प्रमाण दिया था कि वासुदेव शब्द का क्या क्या अर्थ होता है, लेकिन उतना सब मेरे लिए लिख पाना भी संभव नहीं था और मेरे लिए बोलना भी संभव नहीं था और समझना भी संभव नहीं था। इसके लिए कुछ को मैं लिखा हूं, उसको हम समझने का प्रयत्न करेंगे आज। तो सबसे पहले अगर लाइन से याद रखेंगे तो वसुदेव का पुत्र वासुदेव हुआ, और दूसरा सर्वभूतादि वासस्य, सभी जीवात्माओं के हृदय में जो वास करने वाले हैं भगवान, वो एक वासुदेव होते हैं। उसके बाद सर्वत्र सो समस्तम च, सर्वत्र और समस्तम च, सभी जगहों पर, सभी वस्तुओं में और व्यक्ति में जिनका वास है उसको भी वासुदेव कहा जाता है। ये दोनों एक ही अर्थ में आता है, है ना। और उसके बाद एक बहुत सुंदर अर्थ दिया है, शायद मैं कभी नहीं सुना था या फिर मैं कभी नहीं पढ़ा था, वो बहुत सुंदर अर्थ वासुदेव शब्द का दिया है, वासुहु स्यात् कर्ण ग्राम, अर्थात वासु का अर्थ होता है कर्ण ग्राम, कर्ण का अर्थ होता है इंद्रिय, कर्णम कर्म करते थे, भगवद गीता के 18वें अध्याय का 18वां श्लोक जिसमें कहा है कि कर्णम कर्म करते थे, कर्ण अर्थात इंद्रिया कार्य करती है, है ना, कर्णम कर्म करते थे, अर्थात कर्ण अर्थात हमारा इंद्रिय। तो वासुहु त्याग कर्ण ग्राम, अर्थात हमारी इंद्रिया जो है वो कर्ण ग्राम, कर्ण ग्राम अर्थात इंद्रियों का समूह है, उसको वासु कहा जाता है। और उसके बाद तेषु देव निशासतम, अर्थात उन इंद्रियों को कंट्रोल कौन करता है, देवता लोग, तेषु देव निशासत, अर्थात देवताओं के द्वारा वो कंट्रोलिंग होता है इसका, हमारी सारी इंद्रियों का। और ततः प्रकाश करो देवो, और उसको भी जो शक्ति प्रदान करने वाले हैं वासुदेव इति स्मृता, इसको वासुदेव कहा जाता है। अर्थात इसका अर्थ ये होगा कि जितनी भी इंद्रिया होती हैं उनको कंट्रोलिंग पावर कौन देता है, कंट्रोलिंग करने का जो कार्य है वो देवता होता है, लेकिन शक्ति प्रदान करने का कार्य कौन करता है, भगवान वासुदेव करते हैं। एक वासुदेव शब्द का एक ये भी अर्थ होता है। तो हम देखते हैं कि जितनी भी हमारी इंद्रिया है, जैसे जब तक व्यक्ति भक्ति में नहीं लगता है, जय श्री श्री राधा गिरधारी भगवान की, जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, तो ये इंद्रियों का जो समूह है, जब तक व्यक्ति भक्ति में नहीं लगता है तभी उनकी इंद्रियों का कंट्रोलिंग कौन करता है, स्वयं देवता लोग करते हैं। तब तक हमारी इंद्रियों को कंट्रोल में कौन करता है, देवता। कंट्रोलिंग में कहाँ ले जाना है, कहाँ क्या करना है, किसके द्वारा क्या प्रेरणा प्रदान करना है, ये सारे कार्य कौन करता है, देवताओं के नियंत्रण में होता है। क्योंकि देवता ही हमें ये गुणों से प्रभावित करते हैं, क्योंकि इंद्रियों के द्वारा वो वहां पे बैठते हैं और उस स्थान पे हमको क्या करते हैं, खींचते हैं। लेकिन जैसे ही व्यक्ति भक्ति में लगता है, गुरु और भगवान को शरणागत होता है, तो उनकी इंद्रियों को फिर कौन कंट्रोल में रखता है, उसको फिर मार्गदर्शन कौन देता है, भगवान करते हैं खुद, है ना। और ये भी है, भगवान के निर्देशन में वो भक्त के सारे कार्य होते हैं। और दूसरी बात है गुरु के माध्यम से, है ना, ये भी एक बात है। और दूसरी बात है कि ये इंद्रियां जब भी भगवान की सेवा में लगती हैं, तो भगवान की सेवा में ये इंद्रियां लगते ही ये इंद्रियों का शुद्धिकरण चालू हो जाता है। हालांकि भगवान जो है वो अधोक्षज है, भगवान को पकड़ पाना हमारी इंद्रियों से संभव नहीं है। इसलिए भगवान का एक नाम है अधोक्षज। अधोक्षज का अर्थ होता है कि जिसको पकड़ने में हमारी इंद्रियां अध मतलब नीचे रह जाती हैं, उसको क्या कहा जाता है, अधोक्षज। तो जिनको देखने में, जिनको सुनने में, जिनको प्राप्त करने में हमारी इंद्रियां बहुत नीचे रह जाती है, उसका नाम है अधोक्षज। तो फिर भगवान कैसे प्राप्त हो सकते हैं, एक प्रश्न हमारे लिए है। तो भगवान ने स्वयं ने कहा है कि भक्त्या माम अभी, भगवान को देखना, भगवान को समझना, ये केवल भक्ति के द्वारा संभव है। तो भक्ति क्या है, भक्ति का अर्थ है, हमने भक्ति की साधारण परिभाषा सुनी है, लेकिन भक्ति का अर्थ है कि इंद्रियों के द्वारा इंद्रियों के स्वामी अर्थात कृष्ण की सेवा करना। इसलिए कहा गया है अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत ग्राह्यम इंद्रिय, है ना, सेवामुखे जीवादो स्वयं एवं स्फुरते। हम अपने प्रयास से कभी भी भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते, नहीं समझ सकते, नहीं देख सकते, लेकिन भगवान को देखने के लिए एक उपाय बताया है रूप गोस्वामी। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत ग्राह्यम इंद्रिय सेवामुखे ही जीवादो। सेवामुखे ही मतलब हमारी इंद्रियों को, अर्थात जीवा आदो, आदो अर्थात आदि आदि, अर्थात सारी इंद्रियों को। जीवा सबसे प्रमुख है, हमारी सारी इंद्रियों में सबसे मजबूत है हमारी जीवा। तो ये जीवा जो है, जीवा आदि इंद्रियों को क्या करना पड़ेगा, हमको सेवान्मुखे अर्थात सेवा से उनको उन्मुख करना पड़ेगा। जब हमारी इंद्रियां सेवा में लगती हैं, तो उन सेवा में लगने से हमारी इंद्रियां धीरे धीरे क्या होती है, शुद्ध होना चालू होती है। और जैसे जैसे हमारी इंद्रिया समूह जो होता है वो शुद्ध होने लगता है, तब जाके हम क्या कर सकते हैं, भगवान को अनुभव कर सकते हैं, देख सकते हैं उसको। जैसे इसका अनुभव किया था ध्रुव महाराज ने, ध्रुव महाराज ने इसका अनुभव किया कि भगवान का जैसे 6 महीने उन्होंने खूब तपस्या किया, उन्होंने भगवती वासुदेव का जप किया, इन सारी क्रियाओं के हो जाने के बाद भी भगवान की अनुभूति उनको प्रत्यक्ष रूप से नहीं हो पा रही थी। और लास्ट में जब भी उन्होंने अनुभव किया, भगवान सामने प्रकट हुए, लेकिन बोलना चाह रहे, लेकिन बोल नहीं पा रहे। ध्रुव महाराज चाह रहे कि मैं भगवान के गुण गाऊं, लेकिन उनसे हो नहीं रहा। तभी भगवान ने क्या किया, उनको अपना जो शंख था उसको स्पर्श करवाया। और जैसे ही ध्रुव महाराज को वो शंख स्पर्श हुआ, भगवान की शक्ति वहां पर काम की, तो तुरंत ही ध्रुव महाराज ने सबसे पहली बात यही बताई, यौंत प्रविश्य मम वास इमाम प्रसुप्तम संजीवयत अखिल शक्ति धर सुधामना। भगवान ने कहा कि हे प्रभु, अखिल शक्ति धर अर्थात सारी शक्तियों को धारण करने वाले भगवान, आपकी कृपा से आपने मुझे ये शक्ति प्रदान किया, हमारी इंद्रियों को शक्ति दिया, इसलिए मैं आपकी स्तुति कर पा रहा हूं और मैं आपको देख पा रहा हूं। हालांकि भगवान सब जगह है, लेकिन उसका अनुभव उसको हम देख नहीं सकते, क्योंकि वो शक्ति जो है वो हमारे पास नहीं है। इसलिए अर्जुन को भी जब भगवान ने विश्वरूप बताया, तभी अर्जुन दिखाने के बाद भी कुछ देख नहीं पा रहा था। तभी भगवान ने कहा कि दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमे योगमेश्वर। भगवान ने कहा कि मैं तुमको दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूं, और ये दिव्य दृष्टि के द्वारा तुम क्या कर सकोगे, मुझे देख सकोगे। और वहां पे संजय भी देख पाए। संजय क्यों देख पाए, क्योंकि उनको भी दिव्य दृष्टि प्रदान किया गया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक व्यक्ति को भगवान की उस दिव्य शक्ति को, अर्थात प्रभुपाद ने लिखा ये कौन सी शक्ति है, ये हरा शक्ति है। हरा अर्थात अहादिनी शक्ति की कृपा के द्वारा ही हम भगवान को अनुभव कर सकते, अर्थात श्रीमती राधा रानी की कृपा से ही हम भगवान का अनुभव, अन्यथा हम भगवान को नहीं समझ सकते। अर्थात भक्ति महारानी की कृपा से ही हम भगवान का अनुभव कर सकते हैं, अन्यथा हम अपने प्रयास से कभी भी भगवान को समझ नहीं सकते हैं। तो ध्रुव महाराज बहुत सुंदर उसमें श्लोक स्तुति किए हैं कि यंत प्रविश्य मम वाच इमाम प्रसुस्तम, आपने क्या किया मेरी वाणी के अंदर शक्ति प्रदान करके कर दी, और उसके द्वारा क्या किया संजीवयति, अर्थात मेरी जो इंद्रियां सोई हुई थी उन सारी इंद्रियों को क्या किया आपने सजीवित किया। अर्थात जब तक हम भगवान का अनुभव नहीं करते हैं तब तक हमारी इंद्रियां जो है वो उसके कार्य है वो सब मरे हुए कार्य माने जाते हैं। तो भगवान ने इसके तात्पर्य में लिखा है कि जब तक हमारी इंद्रियां भगवत अनुभूति नहीं कर लेती है उससे पहले जितने भी कार्य होते हैं हमारे वो सब कार्य क्या होते हैं एक मृत देह के कार्य के समान माने जाते हैं। तो ध्रुव महाराज ने हरा शक्ति अर्थात अल्हादिनी शक्ति की कृपा से इसका अनुभव किया, जो शक्ति प्राप्त किया और वो भगवान की कृपा से हुआ। तो यंत प्रविश्य मम वाच इमाम प्रसुप्तम संजीवयत अखिल शक्ति धरस्व धाम्ना, आपने आपकी कृपा से मेरी सारी इंद्रियों को प्रकाशित किया, संजीवयति अर्थात शक्ति प्रदान की है। कौन सी अन्यांश हस्त चरण श्रवण स्वगादिन, उन्होंने कहा कि कितनी कितनी, एक तो हाथ में मेरे हाथों को आपकी कृपा से शक्ति प्राप्त हुई है, और चरण मेरे चरणों को, और श्रवण आपको मैं सुन भी पा रहा हूं तो श्रवण के लिए भी आपकी कृपा से हो रहा है, और त्वग आदि, त्वग अर्थात हमारी स्पर्शेंद्रिया, क्योंकि ध्रुव महाराज ने भगवान को स्पर्श करके भी अनुभव किया, उनके चरणों को भी स्पर्श किया। तो इस प्रकार ध्रुव महाराज अनुभव कर रहे हैं कि मैं इतना प्रयास किया लेकिन मेरे से यह संभव नहीं हुआ, लेकिन आपने कृपा किया तो आपकी कृपा से यह संभव हुआ। तो हमारी जितनी भी इंद्रियां है इन इंद्रियों के द्वारा हम कभी भी भगवत अनुभूति कर नहीं सकते जब तक भगवान हमको वो शक्ति प्रदान नहीं करते। और वो शक्ति क्या है, जैसे ब्रह्मा जी ने भी अपना थोड़ा रियलाइजेशन बताया है, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेना, उसमें कहा है कि प्रेम रूपी अंजन जब भी व्यक्ति अपने आंखों में लगाता है तभी वो व्यक्ति भगवान का दर्शन कर सकता है। और प्रेम की तुलना भक्ति से की जाती है, प्रेम जो है वो भक्ति है, और जब तक व्यक्ति की आंखों में भक्ति अर्थात हृदय में भक्ति नहीं होती है तभी तक वो व्यक्ति कभी भगवान की अनुभूति नहीं कर सकता। तो भगवान की अनुभूति करने का तरीका यही बताया गया है कि हमारी इंद्रियों को सेवान्मुखे ही है ना, हमारी इंद्रियों को सेवा में लगाएंगे तो जितना हम अपनी इंद्रियों से सेवा करेंगे उतना ही हमारी इंद्रियां है वो क्या होती जाएगी शुद्ध होती जाएगी, और धीरे धीरे ये भौतिकता से हमारी इंद्रियां शुद्ध होकर फिर आध्यात्मिक वस्तुओं को पकड़ने में सक्षम हो जाती है, और तभी जाके हमारी इंद्रियां भगवान की अनुभूति कर सकता है। क्योंकि ये रियलाइजेशन किसका है, ध्रुव महाराज का है, ध्रुव महाराज इसको प्रैक्टिकल बता रहे कि मैं ये अनुभव कर रहा हूँ। और प्राणान नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम, ये ना ध्रुव महाराज ने अनुभव करने के बाद कहा कि इसलिए मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ, ऐसे भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ, क्योंकि आप नहीं होते तो मैं आपको देख भी नहीं पाता, इवन भगवान दिखा भी देते हैं तो उसको बंद करने के लिए भी बोलना पड़ता है, क्योंकि जब भी विश्वरूप अर्जुन को दिखाया तभी अर्जुन जब भी देख रहा था तो लास्ट में वो डर गया, उसने बोला कि बस, क्योंकि काल रूप जब भी बताया फिर अर्जुन ने कहा कि अब मैं नहीं देख सकता हूँ, मतलब बहुत डर गया ऐसा ही उसने अनुभव किया, तभी भगवान से कहा कि बस अभी मेरे को ये रूप नहीं देखना है, अभी आपका जो द्विभुज रूप है वो मुझे बताओ, है ना, क्योंकि ये रूप देख के मुझे क्या लग रहा है बहुत डर लग रहा है। तो भगवान की कृपा से ही हम देख भी सकते हैं और भगवान की कृपा से ही भगवान अंतर्धान भी हो जाते हैं, जैसे नारद मुनि के सामने प्रथम स्कंद में नारद मुनि के सामने भगवान प्रकट हुए, है ना, पहले तो हृदय में आए, हृदय के बाद सामने आए बात, तो जैसे ही भगवान का अनुभूति हुआ तो तुरंत ही फिर क्या हुआ भगवान अंतर्धान हो गए, उनको कह के गए, उनको बोला कि तुम और भी भजन साधन तपस्या करो और जब तुम्हारा भजन साधन सफल होगा तब जाके फिर से मैं तुमको दर्शन दूंगा। तो भगवान हो सकता है कि कभी कभी शुरुआत में अनुभूति, लेकिन ये केवल नारद के लिए संभव है। प्रभुपाद ने लिखा है वहां पे कि ये केवल नारद मुनि के लिए संभव है, हमारे लिए नहीं है, है ना। तो और भक्त लोग कभी कभी ऐसा अनुभव भी करते हैं, भक्ति की शुरुआती अवस्था में जैसे भक्त जुड़ता है तो बहुत उत्साह और बहुत आनंद के साथ करता है, क्योंकि उसमें उसको अनुभव होता है कि मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूं। लेकिन जैसे आगे बढ़ जाता है थोड़ा, उसके बाद क्या हो जाता है, बस चल रहा है, ऐसा होता है अनुभव, है ना। तो एक भक्त बता रहे थे कि ऐसा अनुभव क्यों होता है, जैसे कोई फ्लाइट में बैठा हो तो उसको अनुभव होगा, फ्लाइट जब शुरुआत से जब ऊपर जाता है तभी अनुभव होता है कि हाँ हम लोग ऊपर, लेकिन जैसे ही वो स्थिर हो जाता है और आगे बढ़ता है तो हमको पता भी नहीं चलता कि ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है। उसी प्रकार भक्ति में भी हमारी ये स्थिति होती है, शुरुआती अवस्था में हम जब उड़ते हैं ना तभी अनुभव होता है कि हाँ हम ऊपर जा रहे हैं, लेकिन जैसे ही ऊपर जाके स्थिर हो जाता है तो क्या होता है, बस चल रहा है, मेरे को लग नहीं रहा है कि मेरा कोई प्रोग्रेस हो रहा है भक्ति में, ऐसा अनुभव करते हैं भक्त लोग। लेकिन ऐसा नहीं है, वो बढ़ रहा है लेकिन हमको पता नहीं चल रहा है। तो अगर गुरु और भगवान के बताए हुए मार्ग के अनुसार, भगवान का मार्ग बताया हुआ है लेकिन गुरु के मार्गदर्शन में अगर हम सेवा करते रहते हैं तो हमारी भक्ति में दिन ब दिन प्रगति हो रही है, लेकिन हमको है ना। लेकिन एक बात है कि एक बात को कभी नहीं चूकना है, वो है गुरु आज्ञा। गुरु के बताए हुए मार्गदर्शन के अनुसार अगर करते रहेंगे तो सिद्धि अवश्यंभावी है ना। तो इस प्रकार वासुदेव शब्द का यहाँ पे थोड़ा अर्थ मैंने पढ़ा है, तो इस प्रकार वासुदेव शब्द के अर्थ को मैं समझाना चाहता था कि भगवान वासुदेव शब्द के कितने अर्थ होते हैं। मुख्य रूप से इस बात को याद रखना चाहिए भक्तों को कि वासु त्याग कर्ण ग्राम, वासु का अर्थ होता है ये इंद्रिय समूह, और उसको जो प्रकाश करने वाले हैं वो देव अर्थात वो है भगवान कृष्ण, उसको ही वासुदेव कहा जाता है। और ये जो है पहले प्रकट हुए थे ऐसा कहा गया है, पहले अर्थात बहुत पहले नहीं, वा फिर वो जन्म में भी नहीं, कभी आपके पास जब ये कृष्ण आए उससे पहले वो किसका बेटा था, वसुदेव का, क्योंकि वहीं पे जन्म लेके वहां से फिर यहाँ पे लाया गया, तो पहले की बात नहीं है, यही जन्म की बात है, वो पहले उसका बेटा माना जाएगा उसके बाद आपका बेटा माना जाएगा। तो इसी बात को बता रहे गर्गाचार्य कि आपका बेटा, कुछ लोग जानते हैं विद्वत भी अर्थात बहुत कम लोग जानते हैं इस बात को, क्योंकि कंस के अनुचर आदि वो लोग को पता नहीं था कि ये किसका, लेकिन कुछ कुछ वृंदावन में कमेंट मारते थे कि तू जो है वो यशोदा और नंद बाबा का बेटा नहीं है, तू किसका बेटा है, कहीं और से उठा के लाया गया है। इस प्रकार से बच्चे लोग जब खेलते थे गांव में कभी कभी सर, लेकिन ठोस प्रमाण किसी के पास नहीं था, ये ठोस प्रमाण कौन दे रहा है, गर्गाचार्य दे रहे हैं। गर्गाचार्य बता रहे हैं कि आपका जो बेटा है वो पहले किसका बेटा था, पहले वासुदेव का बेटा था, और उसके इसीलिए उसका नाम वासुदेव रखा जाएगा, और कुछ लोग उसको वासुदेव करके ही संबोधित करेंगे, लेकिन अभी जो है वो आपके बेटे के रूप में खाली काम कर रहा है, कार्य कर रहा है, मतलब ये केवल आपका बेटा बन के आया हुआ है लेकिन तुम्हारा बेटा है नहीं है, ये मूल रूप से वासुदेव का पुत्र है, और अभी तुम्हारे साथ लीला करने खेलने के लिए आया, फिर से क्या करेगा, कुछ साल खेलेगा आपके साथ फिर चला जाएगा। तो इस प्रकार वसुदेव जी गर्गाचार्य जो है वो भगवान का पूरा बायोडेटा निकाल के बता रहे कि ये किसका बेटा है, अभी तुम्हारे साथ है, कितने साल रहेगा, फिर कैसे रहेगा, तो कुछ कुछ संकेत दे रहे हैं, पूर्ण रूप से नहीं बता रहे हैं। और देखिए गर्गाचार्य ऐसे ऋषि है वो जानते हैं कृष्ण के विषय में सारा बातों को जानते हैं, इसलिए विद्वत भी में कौन कौन आएगा, नारद मुनि और ये गर्गाचार्य। नारद मुनि को इस बात का पता था कि भगवान को वहां पे ट्रांसफरिंग होगा और ये सब, और उसके बाद कौन है, ये गर्गाचार्य भी जानते हैं कि भगवान कृष्ण को वहां से यहाँ किस प्रकार लाया गया है। तो कुछ कुछ ऐसे महात्मा लोग थे जो इस बात को जानते थे कि भगवान कृष्ण वसुदेव का ही बेटा है, लेकिन अभी नंद बाबा के यहाँ उसको छोड़ा गया है कुछ समय के लिए, क्योंकि उसको जेल में रखा गया है, ये कंस का काल है, इस बात को जानते हैं। तो कुछ लोग थे जो इस बात को जानते थे, तो उसकी के अंतर्गत ये गर्गाचार्य भी जानते हैं कि भगवान जो है वो किसके बेटे के रूप में है। तो इस प्रकार से व्याख्या किया गया है और भगवान के और भी गुण रूप नाम लीला आदि का वर्णन अभी कल किया जाएगा कि इनके नाम रूप ये इनके क्या क्या नाम गुण रूप आदि वर्णन आगे के श्लोकों में करेंगे। तो आज के श्लोक में इतना ही संक्षिप्त में प्रभुपाद ने भी तात्पर्य लिखा है और मैं भी और बस ज्यादा कुछ बोल नहीं सकता हूँ, इतना इनफ है। तो कुछ बातें थी जो भागवतम के ध्रुव महाराज के प्रसंग से मिलती जुलती थी और कुछ अन्य पुराण आदि से है। जिस प्रकार ये श्लोक था वो विष्णु पुराण अंतर्गत था और ये श्लोक किसी ने टीका लिखा हुआ है, जैसे श्रीधर स्वामी का टीका से नीचे दूसरे एक आचार्य ने श्रीधर स्वामी की टीका को एक्सप्लेन करते हुए एक आचार्य ने टीका लिखा है, उसी के अंतर्गत ये वासुदेव शब्द का बहुत सारा 25-30 अर्थ दिया है, लेकिन उतना सारा समझना संभव नहीं था मेरे लिए। तो जो भी दो चार जानता था उसको आपके सामने प्रस्तुत किया। हरे कृष्ण, कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। जब भी व्यक्ति भक्ति में जुड़ जाता है तो उसके इंद्रियों का नियंत्रण भगवान के द्वारा होता है, लेकिन उससे पहले देवता लोग नियंत्रित करते हैं। क्योंकि देवता लोग इसलिए करते हैं क्योंकि कर्मानुसार गति को प्राप्त कराने का कार्य कौन करेगा, फिर ये देवताओं के ही कार्य रह जाएगा। इसके लिए उनका जो कर्म है उसके अनुसार उसको फल प्रदान करना, अथवा उसकी इंद्रियों पर बैठ के उसको उस कार्य में लगा देना। तो ये कंट्रोलिंग कौन करेगा, देवता लोग करेंगे। लेकिन जब भक्ति में जुड़ जाएगा तो सारा उसको सबको हटा देते, फिर भगवान करते हैं उसको मैनेजमेंट। तो इस प्रकार से चलता है, क्योंकि भक्त जब शरणागत होता है तो फिर भगवान के हाथ में चला जाता है। इसलिए देखो, भगवान भी कभी कभी भक्त को ऐसी परिस्थितियों में डाल देते हैं, अपराधजनक कार्य करवा लेते हैं, क्योंकि उसको लास्ट में इस बात का अनुभव हो कि मैं गलत किया। और जब आप जानते हैं भक्त जब भी गलती करता है ना, उसके बाद उसकी गलती का जब उसको एहसास होता है तभी वो पहले से भी अच्छा भक्ति करता है। भगवान इस बात का भी कभी कभी अनुभव करवाते हैं। यस प्रभु,
भगवान के सूर भक्त होते हैं तो भक्तों में गलती होता नहीं कभी, उसमें भगवान की कुछ न कुछ प्रेरणा होती है उस भक्तों से कराया जाए। हम सुख दुखी से है, हम उसको ना तो नहीं कर सकते। जैसे कि आपने इसके तरह एग्जाम्पल प्लेन जा रहा है, प्लेन जब प्लेन जाता है तो वायु पटक प्लेन ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन जब स्मूथ जाता तो वायु पटक जा रहा है कि
नहीं जा
रहा, नहीं जा रहा है। तो कैसे हमें मालूम पड़ेगा, जो इंटेलिजेंट आदमी होगा तो उसको मालूम पड़ जाएगा कि जहाज चल ही रहा है, और जो इंटेलिजेंट नहीं है उसको कैसे मालूम पड़ेगा कि जहाज जा रहा था, इसको बताइए।
बुद्धिमान व्यक्ति होगा उसको ध्यान रखना चाहिए। मैंने उसी बात में बताया था कि अगर हम गुरु की आज्ञा में ढंग से सेवा कर रहे हैं और गुरु की प्रसन्नता के लिए ही कार्य कर रहे हैं तो फिर हमको समझना चाहिए कि मैं सही मार्ग पर हूँ। लेकिन जब हम अनुभव करते हैं कि गुरु की आज्ञा का भी पालन नहीं कर रहे, अपने मनमाने ढंग से कार्य कर रहे हैं, तो समझना चाहिए कि हमारा प्लेन कोई और दिशा में जा रहा है। तो सही रास्ते में जा रहा है अनुभव होता है अगर गुरु आज्ञा में हम चलते रहेंगे तो। नहीं, वो कंट्रोल करते, शक्ति नहीं देते। शक्ति तो भगवान ही देते हैं, वो लोग नियंत्रण करते हैं। नियंत्रण करना एक अलग बात होती है और शक्ति देना एक अलग बात होती है। नियंत्रण मतलब उसको कहां पे डाइवर्ट करना है, ये सब काम देवताओं का लोग करते हैं, लेकिन शक्ति मूल रूप से देने वाला कौन है? गतिर भलता प्रभु साक्षी। शक्ति तो भगवान ही देते हैं, फिर उसके बाद डाइवर्टिंग कार्य जो है वो कर्मों के अनुसार जितना होगा वो देवता लोग करते हैं। यस प्रभु। प्रभु जी का प्रश्न है कि हरे कृष्ण आंदोलन में हम जुड़ते हैं तो हम जब सेवा करते हैं तो उसमें कुछ अभक्त लोग भी सेवा करने के लिए आते हैं, तो क्या उस अभक्तों के साथ सेवा करने से हमारी भक्ति में कुछ बाधा आता है ऐसा? लेकिन जो सेवा करता है वो भक्त अभक्त हो ही कैसे सकता है? सेवा कर रहा है तो अभक्त हो ही नहीं सकता है। सेवा कर रहा है मतलब वो भक्त है। बाहर से कर्मचारी हो चाहे कोई भी हो, भक्त के लिए कोई ऐसा स्पेशल थोड़ी है कि भक्त होगा वैसा ही होना चाहिए। भक्त तो कहीं भी कैसे भी हो सकता है, इसके लिए वो हम निश्चित नहीं कर सकते। सेवा कर रहा है वो कर्मचारी है, फिर भी वो हो सकता है कि हमसे शुद्ध भावना हो तो हमसे अच्छा भक्त माना जाएगा, तो उसका संग प्राप्त करके हम तो भक्ति में आगे भी बढ़ सकते हैं, ऐसा भी होता है कभी कभी। क्या प्रश्न है? कुछ ठीक है, समझ जिज्ञासा नहीं है, वो बता रहे हैं कुछ। ठीक है, हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। जोड़ीदार मिल गया, दावेदार देव।